ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वंस अगेन, सुबह से आपने बहुत सारे क्लासेस डिफरेंट टॉपिक पे सुने और अभी हम अनुभव सुनेंगे, एक्सपीरियंसेस। क्लास सुनते हैं लेकिन जिन्होंने इस ज्ञान को जीवन में धारण किया है, जो इस राजयोग का अभ्यास करते हैं, उनके हम अनुभव सुनेंगे। हाँ, तो आज हमारे समक्ष हमारे SSW के सीनियर फैकल्टीज जो हैं बैठे हुए हैं, BK ग्रुप कैप्टन देवेंद्र सचान जी। सर, यस सर, के बारे में बताऊं, आप जो राजयोग का अभ्यास है पिछले लगभग 25 साल से करते हैं और आपकी पूरी फैमिली, वाइफ, सन, सब इस राजयोग को फॉलो करते हैं। आप NIT जमशेदपुर से BTech इंजीनियर हैं और एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज से आपने BTech एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की हुई है। 1991 में आपको भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला। आपने भारतीय वायुसेना में MiG-21, पायसेन, SU-30 लड़ाकू विमान जैसे विभिन्न विमानों पर वरिष्ठ इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में काम किया है और वर्तमान में आप जयपुर में जो सेना की दक्षिणी कमान है वहां मुख्यालय में एक मुख्य इंजीनियर के रूप में तैनात हैं। और जैसे मैंने बताया कि SSW के आप सीनियर फैकल्टी हैं, एयरफोर्स में हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें आप एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप और साथ में हमारे EK हजेला जी हैं जो एडिशनल DG ऑफ BSF हैं। आप बाबा के बच्चे 2015 से आप राजयोग का अभ्यास करते हैं। आपने भारत के जो दोनों बॉर्डर हैं, वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगते हैं, वहां पे आपने अपनी सेवाएं दी हैं एज ए BSF में सीनियर ऑफिसर और आपने बहुत सारे मेडल जीते हैं, जिसमें जो प्रेसिडेंट पुलिस मेडल है वो भी, उससे भी आपको नवाजा गया है। तो सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष हमारे साथ कर्नल सुंदर विश जी हैं जो शौर्य चक्र से नवाजे हुए भारतीय सेना के अधिकारी हैं। आपने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है, जैसे एक प्रोजेक्ट वीरगाथा के तहत स्कूल, कॉलेज और कई स्थानों पर प्रेरणादायक भाषण दिए हैं। साथ साथ भारत के जो आर्म फोर्सेस और सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस हैं, उनकी फॉर्मेशंस और यूनिट्स में जाके बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल को आपने मोटिवेट किया है। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हम आपसे भी सुनेंगे। और सर भी 2009 से राजयोग का अभ्यास करते हैं। बहुत सारे एक्चुअली बायोडेटा में बातें होती हैं, पर मैं आपको इन जनरल बताऊं, ये इनके जो अनुभव हैं उनसे हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे प्रोफेशनल लाइफ, वर्किंग लाइफ और जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है उसका बैलेंस करके हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन सचान सर से रहेगा। सचान सर, आपकी ये राजयोग वाली जो यात्रा है वो कैसे शुरू हुई और उससे आपको क्या क्या लाभ हुए?
ओम शांति। बहुत वंडरफुल यात्रा रही अभी तक की, जो मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूं। एक्चुअल में लौकिक जो हमारे पेरेंट्स थे वो बचपन से नहीं थे, तो भगवान के प्रति बहुत मन में ये रहता था कि इस जीवन में मुझे परमात्मा मिल जाए। और काफी कठिनाइयों से, परेशानियों से जीवन बीत रहा था, तो ऐसे करते करते मन जो है, आप जानते हैं जैसे आज के जीवन में बड़ा स्ट्रेस रहता है, फौज में भी स्ट्रेस रहता है, तो काफी स्ट्रेस रहता था। तो ये करते करते बात 1999 की है कि उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे पूजा पाठ, भक्ति, क्योंकि मैं चाहता था किसी तरीके से मुझे एक कोई ऐसा ज्ञान मिले, ऐसा मार्ग मिले जिससे कि मैं अंदर से सशक्त हो जाऊं और मन बहुत शांत स्टेबल हो जाए और जीवन में सभी समस्याओं का समाधान मिल जाए, पर मिलता नहीं था। तो बड़े सारे वेद शास्त्र पढ़े जिनमें मैं आपको बताना चाहता हूं, अष्टावक्र गीता, गीता और रामायण। रोज मैं इतने सारे पाठ करता था, पूजा पाठ करता था, किंतु उससे कुछ मिलता नहीं था। जैसे सुंदरकांड, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, ये सारा कुछ मैं रोज करता था, किंतु मन जो था ना, फौज में हमारे स्ट्रेस काफी होता है, तो हमारी जो ड्यूटी रहती थी लड़ाकू जहाजों में, उस सुबह 4 बजे शुरू होती थी, रात के करीब कभी 1-1 बजे तक खत्म होती थी, क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है बहुत टफ होती है। फ्लाइंग सुबह शुरू होती है और लेट नाइट तक फ्लाइंग चलती है, तो काफी ज्यादा स्ट्रेस से गुजरने के बाद ये सब चीजें, मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे कोई ऐसा एक रास्ता मिले, मुझे परमात्मा मिले। ये सब करते करते भी कुछ नहीं हुआ। फिर बहुत सारे वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते बहुत सारी विद्याएं सीखी दुनिया में जो आजकल हैं, जैसे कि रेकी सीखी, कुंडलिनी जागरण किया, ओशो के पास गए, सूत्र नीति सीखी, कुछ नहीं हुआ उससे। उसके बाद इस्कॉन में गए, उसमें कुछ नहीं मिला। हठयोग सीखा, उसमें कुछ नहीं मिला। बहुत सारे पंडितों ने बड़े सारे पैसे लिए, जैसे आप जानते हो ना, आपको ये अंगूठी वो अंगूठी, ये योग है वो योग है, किसी ने 10,000 रुपए ले लिए, किसी ने 1,100 रुपए ले लिए, किसी ने 2100 ले लिए, ये पाठ वो पाठ। तो घाट घाट का हमने, परमात्मा ने मुझे अनुभव कराया, ये करते 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 कुछ भी प्राप्त नहीं, और इन्हें हताश होता जा रहा था। तो जीवन में इतना स्ट्रेस फौज में होने के कारण और पर्सनल लाइफ में होने के कारण मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर एक पंडित जी ने बोला कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए 1.25 करोड़ बार। मैंने कहा इतना तो मैं कर नहीं पाऊंगा। बोले नहीं आप करिए, मैं आपके साथ हूं। वो किया, उसके बाद उससे भी कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। बहुत मेहनत लगी, सारे ग्रहों के मंत्र सिद्ध किए, ये सब फौज की नौकरी में रहते रहते मैं कर रहा था। मेरे साथ मेरी वाइफ भी है। उस समय जब कुछ नहीं मिला, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूं लाइफ की, मैं थक गया। मैंने कहा अगर आप हो तो अब आप मुझे मिलो, आप मुझे सही रास्ता दिखाओगे। ये मेरा कहना था, मैंने सब कुछ रख दिया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा ये, क्योंकि मैंने सारा अनुभव ले लिया, इतनी सारी योग विद्याएं, इतने सारे मेडिटेशन, सब जो मैंने आपको बहुत थोड़ा सुनाया अभी। तो एक हफ्ते में मुझे पशुपतिनाथ की रथ यात्रा से ब्रह्मा कुमारी की एक रथ यात्रा आ रही थी, तो राजस्थान में मुझे वहां परिचय मिला। इतना अनुभव लेने के बाद मुझे समझ में आया कि ये मार्ग बिल्कुल सही है। वहां मैं थोड़े समय के लिए गया, उन्होंने मुझे मेरा परिचय दिया। मैंने कहा बिल्कुल सटीक परिचय, ये मैं ही हूं, मैं आत्मा हूं। और मैं बहुत कंफ्यूज था लाइफ में, किंतु परमात्मा ने जब मुझे अपना परिचय दिया, सारा आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म हो गया। और उसके बाद परमात्मा का परिचय मिला, मैंने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि इतना अनुभव ले लिया था, इतने सालों से मैं उनको ढूंढ रहा था। 1 वीक मैंने भगवान को संकल्प किया, हे परमपिता आप हो तो आप मुझे मिलोगे, मुझे सही जीवन में दिशा दोगे, और ये जो मेरे को स्ट्रेस है, डिप्रेशन चल रहा था इतने सालों से, आप उसको खत्म करोगे। 1 हफ्ते का मैंने कोर्स किया और जो 6-7 साल पुराना डिप्रेशन था वो 1 हफ्ते में गायब हो गया। 1 वीक। इतनी मेडिसिन ली थी, इतनी दवाइयां ली थी, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो वो दिन है और आज का दिन है, 25 साल परमात्मा ने अपने गोदी में लेके आ गए। और इस राजयोग से जो उसके आगे प्राप्तियां हुई, मुझे जीवन का लक्ष्य समझ में आया, मैं कौन हूं, मैं एक सोल हूं। ये जो हम पहनते रैंक्स ना, ये मेरा रोल है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा रोल है। आई द सोल, मैं ये रोल प्ले कर रहा हूं और ये रोल मुझे बहुत अच्छे से निभाना है। तो गॉड का इंस्ट्रूमेंट बनके, परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट बनके, उसके बाद जहां जहां हम लोग गए, हमने ये जो ज्ञान हमें मिला था वो मैं आगे आपको अनुभव में सुनाऊंगा। हर स्टेशन में परमात्मा ने बहुत सारी सेवाएं कराई, तो इससे सबसे पहले डिप्रेशन गायब हो गया, स्ट्रेस फ्री हो गई, लाइफ हेल्दी लिविंग आ गई जीवन में। हमारा जो परिवार है, जो मेरी वाइफ है, बेटा है, वो सब बहुत अच्छे से, हमें एक रास्ता मिल गया क्योंकि भगवान ने स्वयं हमारा हाथ थाम लिया था। और ये करते करते फिर फौज में जो हमारी नौकरी है, वो फौज की नौकरी काफी स्ट्रेसफुल थी, वो बहुत अच्छी सुगम हो गई क्योंकि जीवन जीने की मुझे कला आ गई। तो ऐसा इस ज्ञान योग से मुझे सबसे पहली चीज मुझे परमात्मा मिला, जो मेरा परम पिता है, जिसको मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, और मेरे पुकार पे मिला। मैंने कहा आप हो तो मुझे मिलोगे, 7 डेज में वो मुझे मिलके उन्होंने कोर्स करा दिया और सारा ज्ञान हो गया। तो ये बात सिद्ध करता है कि वो हमारी आवाज सुनता है, दिल की आवाज सुनता है। जब उसको मैंने प्यार से पुकारा तो उसने मुझे ये सारे अनुभव कराए। तो ये बहुत वंडरफुल अनुभव रहा, और उसके बाद एयरफोर्स की जो लाइफ है उसके अनुभव मैं आपसे आगे जाके शेयर करूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से मुझे लाइफ में एक दिशा मिली, और जितनी भी वीकनेसेस थी, कमजोरियां थी, स्ट्रेस था, जितने भी मनोविकार थे, वो सब धीरे धीरे सब छूट गए, तो आज मैं आपके सामने बैठा हूं। थैंक यू
सर। ये बात तो बिल्कुल सिद्ध होती है कि अगर व्यक्ति अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख जाए ना, तो उसके चेहरे से उसकी उम्र का पता नहीं चलता है। आपने देखा होगा कल जैसे इनॉग्रल हो रहा था, उसमें कर्नल सती भाई थे, कैप्टन शिव भाई थे, ये सब मतलब बहुत पुराने हैं SSW से जुड़े हुए, लेकिन आप उनकी एनर्जी देखेंगे, उनकी एज देखेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप सर का चेहरा देखिए, मुस्कुराता हुआ है। तो ये स्वयं प्रमाण होता है कि अगर व्यक्ति मेडिटेशन का अभ्यास करता है, राजयोग का अभ्यास करता है, तो उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हजेला सर जी से मैं पूछना चाहूंगा, सर आपकी, सर ने बताया कि जब आप सर्विंग थे तो आपको बाबा का ज्ञान मिला, और हजेला सर जी को जब आप रिटायर हुए एज एडिशनल DG ऑफ BSF, उसके पश्चात आपको ज्ञान मिला। अब अनुमान लगा सकते हैं, अपने सर्विस को करने के बाद, इतने सारे अनुभव लेने के बाद, सर आपको कब ऐसा लगा कि राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, और ये जो मेडिटेशन है इसको सीखने की हमारे जीवन में बहुत जरूरत है, तो ये जो यात्रा है इसका भी हम आपसे अनुभव पूछना चाहेंगे सर।
देखिए, ओम शांति। मेरी यात्रा एक्चुअल तो राजयोग से जो फॉर्मली मैं जुड़ा हूँ वो रिटायरमेंट के बाद 2015 से जुड़ा हूँ, मगर मैं थोड़ा सा शुरू से ही थोड़ा भक्ति मार्ग में, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता रहा हूँ। तो 2001 में मुझे वेस्ट बंगाल बॉर्डर के ऊपर कमांडेंट या कमांडिंग ऑफिसर की ड्यूटी दी गई थी। तो जो लोग वहाँ रह चुके हैं या इस इलाके के बारे में जानते होंगे, तो वो बहुत ही नोटोरियस और सेंसिटिव बॉर्डर है बंगाल का, खास करके वेस्ट बंगाल में, एंड इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज। तो जब मैं कमांडिंग ऑफिसर होके वहां पर पहुंचा, तो दिन भर हमारा करीब 100 किलोमीटर बॉर्डर मेरे पास था एज ए यूनिट कमांडर, और दिन भर हम बॉर्डर के ऊपर ही घूमते रहते थे, कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट होता ही रहता था, और कमांडिंग ऑफिसर को वहां पर जाना ही होता था, और कम से कम नहीं तो 10 से 15 नाइट्स बॉर्डर के ऊपर रहनी पड़ती थी मुझे। कुछ तो ऑर्डर्स के अनुसार, कुछ मैं अकेले रहता था, मेरा परिवार मेरे पीछे रहता था, घर में सेटल था, बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। तो रात में मैं 9-10 बजे करीब जब आता था बॉर्डर से लौट करके, करीब 20-25 दिन ऐसे ही रहते थे मेरे। तो रात में मैं सोने से पहले मैं सत्संग सुना करता था, मतलब आधा घंटा 20 मिनट एक सत्संग जरूर सुनता था और तभी सोता था। ये आदत मुझे वहीं से पड़ी, और सत्संग में मैंने, आप जो आजकल गुरु हैं वो आप नाम लीजिए, वो सबका टीवी पे आते थे, तो मैं कभी किसी का बटन ऑन कर लिया, कभी किसी का ऑन कर लिया, कभी किसी का ऑन कर लिया, जैसे श्री श्री रविशंकर, सदगुरु उस समय आशाराम बापू, मुरारी बापू और गुरु माँ और पता नहीं कितने थे। तो इसी में एक दिन चैनल लग गया, शिवानी बहन का प्रोग्राम आता था अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज, तो मैं वो अचानक लग गया, मुझे कोई वो पता नहीं था क्या है ब्रह्म कुमारीज क्या, तो मेरे को उनके प्रोग्राम में इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने कुछ समय के बाद सारे प्रोग्राम बंद कर दिए और केवल शिवानी को ही सुनने लगा, और मेरी लत ऐसे बढ़ गई कि मैंने एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सीडी प्लेयर खरीदा और शिवानी की सीडीज आती हैं, अभी भी होंगी, पहले तो ज्यादा आती थी, उस समय ज्यादा प्रोग्राम नहीं होता था, आजकल तो पीस ऑफ माइंड चैनल है, अवेकनिंग चैनल है, प्रोग्राम दिन भर चले रहते हैं, 24 घंटे चले रहते हैं। तो शिवानी के सीडी ला करके, और फिर मैं अपने साथ बॉर्डर के ऊपर भी जब जाता था, रात में सोता था तो वहां पर सीडी प्लेयर ले जाता था और शिवानी के सुना करता था, तो मेरे को एक चस्का लग गया। उसी में मुझे पता लगा कि ये ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन है, माउंट आबू है, तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई इससे। और उसके बाद मैं 2010 में मैं यहाँ DIG लगा अहमदाबाद में, BSF हेडक्वार्टर में, तो मेरा एक बार यहाँ पर माउंट आबू में मेरी एक टेम्परेरी ड्यूटी 2 दिन की लगी, तो मैंने अपना ऑफिशियल काम जो था वो एक आधे दिन में ही कंप्लीट कर लिया, मेरे पास 1.5 दिन था, तो मेरे पास जो था कि या तो मैं वापस चला जाऊं। फिर माउंट आबू में फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने कहा चलो माउंट आबू को भी घूम लेते हैं, तो मैं यहाँ CRP के कैंपस में ठहरा, मैंने वहीं पूछा, कहने लगे था आप कहीं मत जाइए, ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर है यहाँ पर, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, आप यहाँ जाइए। तो हम आ गए यहाँ पर, वाइफ भी मेरे साथ में थी, तो यहाँ उन्होंने मुझे पूरा लंच के बाद तक घुमाया, पांडव भवन में लंच कराया, आर्ट गैलरी दिखाई, पूरा ज्ञान सरोवर का राउंड लगाया। और उसके बाद वो जो भाई जी कंडक्ट कर रहे थे हमें, उन्होंने कहा कि अब आप नीचे शांतिवन में जरूर जाइएगा, तो उन्होंने सारा नीचे हमारे जाने पे से पहले टाई अप कर दिया था। फिर शांतिवन में हमको घुमाया दिखाया, टोली खिलाई और सौगात भी दी मुझे, जो लक्ष्मी नारायण की एक फोटो होती है वो, और उसके बाद हम वापस चले गए। तो दिमाग में आया कि ये एक इम्प्रेशन बड़ा यार, ये ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छा है, बड़ा पीस है, और जब हम कैंपस में यहाँ पांडव भवन वहाँ गए तो मुझे एक अलग ही माहौल लगा, तो मैंने कहा यार इसमें कुछ घुसना चाहिए, और शिवानी बहन को तो मैं पहले ही सुनता था, तो मगर कुछ ऐसा विधि का विधान रहा कि उसके बाद मैं 2011 में फिर जो था मैं वापस एज ए IG बंगाल में पहुंच गया, वेस्ट बंगाल में, और वहां तो एज ए IG जब लगा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, एक सेकंड का टाइम नहीं मिलता था, बहुत 1000 किलोमीटर बॉर्डर मेरे पास था। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि 2012 में मुझे IG छत्तीसगढ़ भी बना दिया BSF का, वहां बस्तर कांके वगैरह सब इलाका मेरे पास था, तो वहां भी बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली, तो मैं ये सब ये सत्संग भूल गया, ब्रह्मा कुमारी इसको भूल गया। 2014 में मैं रिटायर हुआ, तब हमने डिसाइड किया कि अब जरूर करेंगे, तो ऐसे ही हमने सर्च मारा, हम लोग लखनऊ में सेटल्ड हैं, तो सर्च मारा नेट पर, तो नजदीक के सेंटर में हमने देखा घर के पास जो है, वहाँ 2015 में हम गए, और अर्ली 15 में, और वहाँ पर हमने दीदी से बात की कि हम कोर्स करना चाहते हैं और आपका राजयोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, और फिर बस वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई, और तब से हम जुड़े हुए हैं और ज्ञान में हैं। और मुझे एक जब मैं बाबा के ज्ञान में 2015 में आया तो मुझे एक मतलब जैसे कहते हैं जीवन की एक भूल और गलती, सबसे बड़ी गलती जो मुझे महसूस हुई वो ये हुई कि यार मैं 2001 में शिवानी के सत्संग देखा करता था और मैं 2015 में 14 साल के बाद ब्रह्मा कुमारी इसके साथ जोड़ रहा हूँ। अगर मैं उस समय जुड़ा होता, मैंने बीएसएफ में 5 यूनिट कमांड की, 2 सेक्टर कमांड किए, 2 फ्रंटियर कमांड किए, तो मैंने कहा ये और बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशंस के थे और बहुत ही स्ट्रेसफुल डिप्रेशन टाइप के, जो आप लोग सोचते होंगे शायद नीचे वालों को होता है, नहीं नीचे वालों को नहीं ऊपर वालों को भी होता है, बहुत स्ट्रेसफुल चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं। मैंने कहा अगर मैं पहले ज्वाइन किया होता तो काश मेरा जीवन कुछ और ही होता। तो इस तरीके से बस जुड़े हैं और उसके बाद हम यहाँ SSW से जुड़ गए और तब से यात्रा चल रही है।
संदेश सर, हम भी जानना चाहेंगे, मतलब बीइंग ए सीनियर ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, सर बोलते हैं ऑफिसर लॉजिकल होते हैं, उनको सर सब खुली आंखों से निर्णय लेना पड़ता है, शांति तो ठीक है लेकिन गन भी उठानी पड़ती है। तो सर ये जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी थी उसके बारे में, आप कैसे जर्नी स्टार्ट हुई और इस जर्नी के दौरान आपको जो योगा का या स्पिरिचुअलिटी का उससे आपके जीवन में जो परिवर्तन आया उसके बारे में हम सुनना चाहेंगे सर।
ओम शांति। जैसा मेरे इंट्रोडक्शन में भाई जी ने कहा था कि मुझे 2009 में शौर्य चक्र से नवाजा गया, प्रेसिडेंट जो है आपको राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र देते हैं, तो उस समय मुझे कोई पूछता तो मैं बहुत प्राउड फील करता, लेकिन आज मेरे को अगर कोई पूछे कि आपको कैसा महसूस होता है तो मैं उसको आंसर बोलूंगा दिमाग खराब हो गया। तो सही में दिमाग खराब हो गया था। मैं उस समय मेजर था हमारे आर्मी में। जब आप नाम लेते हैं तो पहले रैंक लगाते हैं और फिर नाम लेते हैं, जैसे मेरा नाम अगर मेजर सुंदर बिष्ट और अगर आपको कोई अवार्ड मिल गया तो उसके आगे आपको अवार्ड लगाना बहुत अनिवार्य है। तो मुझे सामने वाले को बोलना पड़ता था मेजर सुंदर बिष्ट शौर्य चक्र, और अगर किसी ने शौर्य चक्र नहीं लगाया तो फिर वो तो गया। तो ऐसा दिमाग खराब हो गया था और मैंने ये महसूस किया कि अचानक से ये जो ईगो, आज के तारीख में हम इसको देह अभिमान कहते हैं, तो ये एकदम से अंदर मैंने पता नहीं कहां से ले लिया। तो जनवरी में जब मुझे ये अवार्ड मिला, अगस्त आते आते मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और इसके चक्कर में मैंने काफी लोगों से हम फौज की भाषा में कहते हैं पंगे लेना और अपने रिश्ते खराब करना, ये करते करते अगस्त तक मैंने बाद में रियलाइज किया कि ये मैंने अचीव किया या मैंने अपना नुकसान किया। तो ये सोचते सोचते, जैसे भाई जी ने कहा कि मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं भी डिप्रेशन में चला गया क्योंकि मैं किसी से सीधा मुंह बात नहीं करता था, मुझसे भी कोई सीधा मुंह बात नहीं करता था। तो ये एक डिप्रेशन स्टेज ऐसा होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आप करें क्या। तो आप फैमिली से भी अपने रिलेशन खराब कर देते हो, रिलेटिव से भी रिलेशन खराब कर देते हो, कलीग से भी रिलेशन खराब कर देते हो क्योंकि आप में एक अहम भरा हुआ है। तो जैसे भाई जी ने कहा था कि वो भी चैनल देखते थे, तो मैं भी क्या करता था, मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी सोचते सोचते, तो 2 बजे 2:30 बजे मैं उठ जाता था और मैं सारे दिव्या चैनल, आस्था चैनल, ये चैनल वो चैनल और खोजता रहता था कि ये मैं क्या कर रहा हूं। और इसी में मेरे को पहले ये ब्रह्म कुमारी का बीके का बी भी नहीं पता था कि क्या है ये, तो ये शिवानी बहन को मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि कुछ मेरे प्रॉब्लम्स जो है इनके पास इसका सलूशन है, लेकिन वो जो एक ईगो अंदर भरा हुआ था वो मुझे रोकता था कि तू क्या कर रहा है ये सब। मैं शेयर मार्केट में डील करता था उस समय, तो एक दिन शेयर मार्केट में डील करते करते आराम अचानक से एक पॉपअप आया, उसमें शिवानी बहन का फोटो आया, तो मैंने पता किया, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये लोग कौन है, व्हाइट साड़ी पहनते हैं, मैंने सोचा कोई क्रिश्चियन के मिशनरी लोग हैं।
तो मैं खोजा सामने मेरे यहाँ पर, जब मैं उस समय रायपुर छत्तीसगढ़ में, हम लोग फर्स्ट इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स थे जो वहां पर गए थे। अभी तो इंडियन आर्मी का काफी बड़ा वहां पर नक्सल्स एरिया में, पहले नक्सल एरिया में आर्मी नहीं थी, तो हम लोगों कुछ लोगों को सिलेक्ट करके वहां भेजा हुआ था। तो वहां मैंने पता किया कि ये नजदीक का सेंटर कौन सा है, तो चौबे कॉलोनी का नजदीक का सेंटर था। मैं वहां गया, वहां जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन रहा बहुत खराब रहा। वो खराब इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग खराब थे, मैं खराब था। तो वहां पर कुछ प्रोग्राम्स थे, तो जो भी सीनियर्स वहां पर थे वो थे नहीं, तो एक बहुत नई जो सिस्टर थी, तो उन्होंने मुझे इनका फोटो दिखाया और इनका बाबा ओबा किया। तो मेरे को बाबा नाम से बहुत थोड़ा सा शब्द में, उस समय काफी सारे केसेस भी हो गए थे आशाराम बापू और ये वो सब, तो मेरे को अजीब सा लगा। और तो मैं, उसने मेरे को एक ज्ञान दिया, मैं उसको चार ज्ञान सुना के वापस आ गया और मैंने बोला अभी आगे से मैं नहीं जाऊंगा इनके पास में। लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज किया, दूसरे दिन जब मैं उठा तो मुझे यही लगा कि अब मैं 2 बजे शायद उठ गया हूं, अभी मेरे को फिर ये चैनल वैनल सर्च करना पड़ेगा। तो अचानक से मेरी नजर जो है वो घड़ी की तरफ गई, उस समय 5 बज रहे थे, नहीं तो मैं 1:30 बजे 2 बजे ऐसा उठ जाता था। वो 5 बजे देख के मुझे इतना अच्छा रियलाइज हुआ, मेरे में एक चीज ये है कि मैं अपनी नींद में जो भी स्वप्न है मैं उसको रिकलेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने रिकलेक्ट किया कि उस दिन मेरे को जो स्वप्न आया था उसमें ये, हम इनको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, तो ये ब्रह्मा नहीं, लेकिन जो हम भक्ति मार्ग में जो ब्रह्मा है वो मैंने देखा कि वो मेरे सपने में आए। और उन्होंने मुझे यही पूछा कि क्या तुम मेरे बचपन को जानते हो, क्या तुम मेरे जवानी को जानते हो। तो मेरे पास इसका कोई प्रश्न तो था नहीं, तो मैंने कहा यार ये, मैं जब ये सेंटर में गया था तो ये जो बहन थी वो भी कुछ ब्रह्मा ब्रह्मा कर रही थी, तो मैं जाता हूं और पता करता हूं कि ये कौन है। तो मैं वहां पर गया, तो उस दिन वहां पर सारी जितने भी दीदी बहने थे सब वहां पर थे। तो जब से जो सबसे सीनियर थी वो, मैंने उनको शुरुआत में एड्रेस आंटी करके किया, तो वो हाथ जोड़े मेरे सामने आई, तो मैंने गलती किया है, मैं उनके ऊपर चिल्लाया वो बहन के ऊपर, उल्टा वो मुझे भाई जी हमसे कुछ गलती हो गई। तो मैंने कहा ये क्या लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, मैं गलती कर रहा हूं और ये लोग हाथ जोड़ के मेरे सामने आ रहे हैं और मुझसे माफी मांग रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आया हूं इधर मेरे को पता करने के लिए, मैं स्वप्न को रिकलेक्ट कर सकता हूं, मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आए हैं, तो आप मेरे को बताओ, आप भी इनको कुछ ब्रह्मा बुर्मा कह रहे थे तो ये क्या चीज है। तो उन्होंने मेरे को कुछ आधा एक घंटे का ज्ञान दिया, वो इतना फिट बैठा और मैं समझ गया कि मेरी मंजिल कहाँ है। ये 2009 की बात है। उसके बाद में उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं 7 दिन का कोर्स करूं, मैंने वहां 7 दिन का कोर्स किया। फिर मैं, मेरी वाइफ यहां पर है रितु, मैंने इनको फोन किया और इनको मैंने दिल्ली से रायपुर बुलाया, इन्होंने ज्ञान लिया। मैंने फिर अपने दोनों बच्चों को जो है अपने पास रायपुर में बुलाया, उनको वहां ज्ञान दिया। मेरे पिताजी उस समय बॉम्बे में थे, वो दिल्ली में, उनको बुलाया वहां शुक्ला दीदी हरिनगर सेंटर में, उनको ज्ञान दिया। और इस तरह से हम सारे के सारे जो है ज्ञान में आ गए। वो दिन है और आज का दिन है, जो भी आप लोगों को यहाँ सिखलाई मिल रही है वो सारी सिखलाई जो है हम जीवन में धारण करते हैं और अपने आप को जो है बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हमें इतना अच्छा ज्ञान मिला। ओम शांति।
सर ने जिन दीदी का नाम लिया उनका नाम था आदरणीय कमला दीदी जी, वो SSW के वाइस चेयरपर्सन थे और मुझे याद है अभी तो उनका देह, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन जब वो रायपुर में थे उनकी इतनी विशाल सेवाएं थी। एक बार उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी होती है पोजीशन और जो सत्ता में थे दोनों को लेके, दोनों के जो विधायक होते हैं उन सब को लेके वो माउंट आबू आए थे सर, और 3 दिन उन्होंने यहाँ पे उनके लिए राजयोग का ये जो कोर्स होता है उसको आयोजित किया था और उनके अंडर में हमने बहुत सुंदर सेवाएं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में की थी। तो सर आपने दीदी को नाम लिया तो मेरे को उनकी याद आई। तो सच में ये तो है, आप देखेंगे अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ तो आप कोर्स कर रहे हैं लेकिन इसके बाद जहां जहां आप जाएंगे वापस अपने स्थान पे, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हमारे सेंटर पे जरूर विजिट करें, वहां की जो बहनें होती हैं, सेंटर के जो वाइब्रेशंस होते हैं, आप जरूर वहां पे एक बार विजिट कीजिए। नो, क्योंकि बहनें सेवा करती हैं, निस्वार्थ सेवाएं करती हैं, और आज ये जो संस्था इतनी सब फैली हुई है उसका कारण ही है हमारी बहनें, क्योंकि उनकी सेवा बिल्कुल निस्वार्थ होती है। बैक टू पॉइंट सर, सचान सर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर। आप ज्ञान में जैसे बता रहे थे एयरफोर्स में टफ ड्यूटीज, इतनी सारी जिम्मेवारी, तो जो बैलेंस होता है हर एक व्यक्ति को जीवन में अपने कार्य का, परिवार का, हेल्थ का, ये जो सारे बैलेंस होते हैं ना, इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो सर ये जो बैलेंस लाइफ हम बोलते हैं, आपने अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस किया?
जैसे भाई साहब बता रहे थे ना, ईगो, ईगो का फुल फॉर्म होता है एज गॉड आउट, अपने जीवन से भगवान को निकाल देना, इसीलिए ईगो आती है। बाबा मिलते ही, परमात्मा का ज्ञान मिलते ही, स्वयं की पहचान मिलते ही, जीवन समझ में आया कि जीवन है क्या, मैं कौन हूं, और ये जो जीवन है इसका लक्ष्य क्या है, और जो मुझे रोल मिला है वह मेरी सेवा क्या है। हम सभी डिफेंस में हैं, तो इस लक्ष्य को समझने के बाद जीवन में बैलेंस आना शुरू हुआ। पहले तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं था, सब अपने को बस देह समझते थे, देह अभिमान में घूमते थे, और देह की रैंक और देह के जो जितने भी पद और चीजें थी, तो बैलेंस के नाम से जीवन में पूरा इंबैलेंस था। तो सबसे पहले जब परमात्मा से हमें ज्ञान मिला, तो ज्ञान से सबसे पहला जो हमारे अंदर बैलेंस आया वो आया अपने स्पिरिचुअल लाइफ, अर्थात हमारी जो आत्मा, जो मैं आत्मा हूं, और जो मेरा जो बैलेंस है, और जो मेरा परिवार है उसका बैलेंस, लौकिक परिवार, फिर जो ऑफिस है वो ऑफिस का बैलेंस। ये समझ में आया कि यहां मेरा ये रोल है, वहां मेरा ये रोल है, उसको यहां नहीं लाना है, इसको वहां लेके नहीं जाना है। एक एक्टर होता है ना, एक्टर को अगर रोल देते हो तो कैसा लगता है, वो रोल वो बखूबी प्ले करता है। तो समझ में आया मैं एक एक्टर हूं, सबसे पहली चीज। अच्छे गुणों की खुशबू बहुत बड़ा काम करती है, वो काम बाद में समझ में आता है कि क्या सेवा होती है। तो इस तरीके से जीवन में जितने इम्बैलेंसेस थे वो खत्म हो गए, हेल्थ रिस्टोर हो गई, और मैं ये बताऊंगा कि सबसे बड़ी एक और जो बैलेंस आई वो था धन का बैलेंस। हमें पता नहीं होता है कि हम पैसे कहां लगा रहे हैं। फौज में आपको पता है कई चीजें होती हैं, पीने खाने से लेकर, हालांकि मैं नहीं करता था ये सब चीजें, बट फिर भी धन गलत दिशाओं में कई जगह चला जाता था। वो बैलेंस आया और वो धन बचना शुरू हुआ, क्योंकि जब सही मार्ग पे चल दिए तो वेस्ट सारे रुक गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जीवन में बैलेंस आया, और पूरा परिवार ही ज्ञान में नहीं चला, साथ साथ बहुत सारे हमारे जो और साथी जन थे, हमारे रिलेटिव थे, कई सारे चले, हमारे इन लॉज चले ज्ञान में, और हमारे लौकिक साइड में और भी लोग हैं जो ज्ञान में अच्छे से चले। तो ऐसे चलते चलते धीरे धीरे सबका बैलेंस आ गया।
सर, सर ने बताया बैलेंस के बाद, जीवन में जब हम ज्ञान को धारण करते हैं तो ये योग है ना, हमें बहुत सारी अनुभूति कराता है। यू नो, आप जब इस मार्ग पे चलते हैं तो आपको परमात्मा की मदद, और जो बोलते हैं हमारी इंट्यूशन होती है वो भी काम करती है। तो सर मैं जानना चाहूंगा, योग के बाद, ज्ञान के मार्ग पे चलने के बाद, आपको परमात्मा मदद के अनुभव या परमात्मा प्यार के जो अनुभव हुए हैं वो अनुभव आप हमारे साथ साझा करें।
ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और मैं समझता हूं कि जब से हम लोग ज्ञान में आए हैं तो बहुत अनुभव हुए, और ऐसे ऐसे अनुभव हुए जो शायद हमें लगता था कि ये इम्पॉसिबल है। अब मैं आपको एक दो अनुभव सुनाता हूँ। एक सबसे पहला अनुभव रिसेंटली है, 2-3 साल पहले का है। मुझे अमेरिका जाना था, मेरे पास अमेरिका, हमने और हमारी वाइफ ने, हमारा लड़का रहता है वहाँ, तो हमारे पास दोनों के पास वीसा था उसका। उसके बाद मेरा दूसरा लड़का रहता है यूरोप में, आयरलैंड में, तो उसका वीसा हर साल लेना पड़ता है। तो हमने वीसा अप्लाई किया, करीब एक डेढ़ महीने का टाइम था जाने से पहले, टिकट विकेट सब बुक हो गए थे वहाँ से, यहाँ से, इंडिया से यूएस, यूएस से आयरलैंड, आयरलैंड से बैक इंडिया। तो हमने वीसा अप्लाई कर दिया, तो एक डेढ़ महीने का मार्जिन रखा हमने। तो क्या हुआ कि हमारा वीसा लास्ट मोमेंट तक नहीं आया। तो एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि अब लगता है प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। तो ज्ञान में आने का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि हम और हमारी वाइफ दोनों टेंशन में बिल्कुल नहीं थे, और अंदर से ऐसा विश्वास था कि हमारा वीसा पक्का आएगा और हम पक्का जाएंगे। और हम लोग बाबा को रोज, जैसे आप लोग अमृत वेला अटेंड कर रहे हैं, अमृत वेला में हम बाबा से डायरेक्ट बात करते हैं। तो हम लोग कई दिनों से बाबा से बात कर रहे थे, बाबा ये आप अपने बच्चों को ले जा रहे हो और आपने लाखों रुपए की टिकट खरीदवा दी है पहले ही, ये नुकसान होगा तो आपका होगा, आप जानना, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ना है, मैं तो यहां बैठा रहूंगा। तो मुझे संकल्प आया, ये बात है सैटरडे मॉर्निंग की, मंडे की मेरी दिल्ली से फ्लाइट थी, तो मुझे संकल्प आया कि क्यों ना इनको एक फटाफट मेल डालो एम्बेसी को। और मैंने सैटरडे अर्ली मॉर्निंग बाबा से बात हुई अमृत वेला में, उसके तुरंत बाद मैंने अर्ली मॉर्निंग मेल डाला और उनको बता दिया क्लियर कट कि देखिए ऐसे ऐसे है और हमारा लाखों रुपए का नुकसान होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि सैटरडे इवनिंग को हमारा वीसा लग करके और संडे को कोरियर से हमारे पास पासपोर्ट दोनों के आ गए। हमारे दोनों बच्चे हमको ये बोल रहे थे कि पापा कैंसिल करूं, कैंसिल करूं। मैंने कहा ना, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, आएगा आएगा, मतलब बिल्कुल निश्चय बुद्धि। तो ज्ञान में आने से आपको एक इतना कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं। तो हम लोग गए और अपने प्रोग्राम से गए, प्रोग्राम से आए। तो अगर शायद हम ज्ञान में नहीं होते तो शायद आप सोच सकते हैं कि कितना टेंशन हुआ होता। और एक और छोटा सा अनुभव सुनाऊंगा आपको, बहुत अनुभव हैं, रोजमर्रा में होते रहते हैं। हम लोग, मैं फैमिली के साथ यूरोप टूर के ऊपर गया, तो 15 दिन का टूर था वो। तो उसमें हम लोग स्विट्जरलैंड में एक माउंट टिटलिस है, वहाँ पर ट्रेन से जाते हैं, वो हिल स्टेशन है, पूरा स्नो बाउंड एरिया है, और ट्रेन ऐसे चलती है बिल्कुल खड़ी, जैसे हमारी दार्जिलिंग की देखी होगी, तो वो तो ग्रेजुअल उठती है, मगर वहाँ पर एकदम ऐसे जाती है, यूँ चढ़ाई लेती है। तो मैं चश्मा लगाता था उस समय भी, अभी भी लगाता हूँ, तो वो मैं चश्मा लगाए हुए था, वो मेट्रो ट्रेन के बराबर उसकी लंबाई होती है। तो पता नहीं कब मेरा चश्मा जो था वो गिर गया ट्रेन में, मैं ट्रेन में लगा के चढ़ा और गिर गया। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह कि उन दिनों इतना अकल नहीं थी या तजुर्बा नहीं था, चश्मा एक ही लेके चलते थे, आजकल तो दो लेके चलते हैं। उस इंसिडेंट के बाद वो चश्मा गिर गया, अब मैं पढ़ नहीं सकता कुछ, देखने में देख लूंगा, बट अगर मेरे को कुछ रीड करना है, टिकट या कोई पैसे, देख नहीं, कर नहीं सकता। तो हमने बाबा को मनी मन बोला कि बाबा ये आप ले घुमाने लाए हो, ये क्या आपने कर दिया, चश्मा मेरे पास दूसरा है नहीं, और चश्मा खो गया उसी अपनी बोगी में। हमने सबसे पूछा तो किसी को मिला, किसी को मिला, सब नहीं, आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन। थोड़ी देर के बाद, एक आधा पौन घंटा के बाद, एक छोटी सी लड़की, इतनी बड़ी, वो लास्ट डिब्बे से ऐसे उठा के लेके आ रही है, हु इज स्पेक्टिकल्स, whose spectacles हर एक से पूछती फिर रही है. जब हमारे पास पहुंची हमने कहा अरे ये तो हमारा है. एंड वी आई गॉट बैक द स्पेक्टिकल्स. तो हमने बाबा को कम्युनिकेट किया और बाबा ने हमारी मदद की और चश्मा वापस मिल गया. आई थिंक मैं तो समझता हूं कि इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल. और हमारा अगर चश्मा नहीं मिलता तो हमारा 15 दिन का स्टे जो है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाता. तो बाबा आपको हर स्टेप में मदद करता है और आपको बिल्कुल निश्चय होना चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, उसको बताना चाहिए और वो मदद करता ही करता है. ये हमारा पूरा मतलब जो एक्सपीरियंस है वो ये है. बस आप उसको प्रॉब्लम बोल दो, सोल्यूशन कुछ न कुछ आपको संकल्प आ ही जाएगा कि कैसे करना है. और बाकी हमें इस गलत फहमी में भी नहीं रहना चाहिए कि हम करें कुछ नहीं, पुरुषार्थ कुछ ना करें और सोचें कि नहीं है तो बाबा सब ठीक कर देगा. तो वो भी नहीं है, जो आपके साथ होना है वो होके रहेगा. बट जैसे आप लेक्चर सुन ही रहे हैं सेल्फ एम्पावरमेंट, बाबा हमको एम्पावर करता है. जैसे हमारा वीसा नहीं आया था तो हमें तो बहुत स्ट्रेस में आ जाना चाहिए, बिल्कुल काम एंड क्वाइट, कोई स्ट्रेस नहीं. चश्मा खो गया, ठीक है खो गया, ऐसे कुछ नहीं कि बहुत परेशान और दुखी, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, ये मिला रहे हैं उसको मिला रहे हैं, कुछ नहीं, शांत एकदम. तो हमको एम्पावर करता है बाबा. तो ऐसे बहुत से हैं.
थैंक यू सर. आप कल से सुन रहे हैं राजयोग. एक्चुअली राजयोग बहुत सहज होता है. सुबेरे दीदी ने बताया होगा, कमल भाई बता रहे थे, विजुअलाइज करते हैं. सारा खेल मन का होता है. अगर आप मन से उस परमात्मा से संबंध जोड़ लेते हैं, जैसे शरीर का संबंध होता है ना, मैं अगर आपको बोलूं कि आप अपने घर में जो सबसे प्रिय व्यक्ति है उसको याद कीजिए, तो आपका मन इमोशन सब कनेक्ट हो जाते हैं. सेम चीज राजयोग के साथ होता है. जब हम परमात्मा को अपना पिता स्वीकार कर लेते हैं ना, कि मैं इस शरीर से अलग एक चेतन शक्ति हूं और मेरा पिता परमात्मा है, जब ये निश्चय बैठ जाता है ना, सर ने एक शब्द यूज किया निश्चय बुद्धि, तो जब ये निश्चय हमारा मन स्वीकार कर लेता है ना, उसी क्षण से परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ जाता है. और जैसे आप सुन रहे होंगे कि संबंध जब जुड़ जाता है ना, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है. आप बोलते हैं ना, किसी से भी संबंध होगा ना, आप मन ही मन उनसे बात कर सकते हैं. तो यही जो विधि है, यही राजयोग की विधि है. पर आप जानते हैं कि जीवन में परिस्थितियां तो आती हैं. योग हमें कुशल बनाता है, लेकिन परिस्थितियां हमें खुद हैंडल करनी पड़ती हैं, राइट. तो सुंदर सर से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है सर, जीवन में ढेर सारी परिस्थिति आती है और हमको उन्हें क्रॉस करके भी जाना है. तो आपके जीवन में भी ऐसी बहुत विकट समस्याएं आई होंगी, आपने उन परिस्थितियों को कैसे क्रॉस किया? आपके जो वो अनुभव है, राजयोग ने कैसे उसमें मदद किया, आपने उन चीजों को कैसे हैंडल किया, सर वो अनुभव हमारे साथ साझा करें.
अच्छा, हम लोग जो यहाँ एक ड्रिल फॉलो करते हैं जो हमें सिखाया है और हम एक हमने अपने जीवन में शामिल किया है. जैसे भाई साहब ने बताया कि हम उसको पिता कहते हैं, गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, तो उसको हम दोस्त भी कहते हैं. हम परमात्मा को अपना दोस्त भी मानते हैं. आप दोस्त के साथ कैसे बातें करते हैं? आप दोस्त के साथ बहुत फ्रैंकली बात करते हैं. तो आपके साथ में ऐसी परिस्थिति आती है कभी कभार कि आपको अपने दोस्त को शेयर करना होता है. तो क्योंकि अभी मैं 2013 की बात कर रहा हूं, जब मैं एक यूनिट कमांड कर रहा था रजौरी में. आप जब 450 लोगों को कमांड करते हो तो जरूरी नहीं है कि सब एक समान हो, और या आप सबको एक समान बना सकते हो. जैसा इससे पहले हमारे जो क्लास चली थी, आपको EQ और IQ के बारे में जो बताया था, कि आपको किसी को बदलना नहीं है. आप जो एक्ट करोगे उसके हिसाब से सामने वाला आपको जज कर लेता है. लेकिन कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी आती है, तो मेरे साथ में एक ऐसी परिस्थिति, जो हमारे सूबेदार मेजर थे, तो उनको किसी हवलदार ने कोई एक्ट करते हुए पकड़ा, कोई इनडिसिप्लिन एक्ट करते हुए, चलो आपसे क्योंकि आप लोग सब फौज में ही हैं, सब डिफेंस में हैं, तो उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी में फौजी पेट्रोल डाल दिया, वो करीब 30 लीटर के आसपास पेट्रोल था। तो मैंने उसको ऐसे हैंडल किया क्योंकि वो मेरे सूबेदार मेजर थे और सूबेदार मेजर एक इंस्टीट्यूशन होता है, तो मैंने उनको यही कहा कि आप एक काम कीजिए, 1500 रुपया जाके मंदिर के गुल्लक में डाल दो। वो उनका पनिशमेंट था, लेकिन वो उन्होंने ईगो में ले लिया। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले एक बार मैंने उनको ऐसे चलते चलते नॉर्मल कैजुअल वे में हमारे मंदिर में श्लोक्स चलते थे, साउथ के श्लोक्स ना, वेंकट 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 करके श्लोक चलते हैं। तो मैंने उसको उनको ये बोला, मैंने कहा एसएम साहब ये आपको समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैंने अपने पेन ड्राइव में उनको कुछ कबीर वाणी, कुछ अनूप जलोटा के और कुछ हमारे भी ब्रह्म कुमारी के अच्छे अच्छे सॉन्ग है जो यूनिवर्सल है, जिसमें कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नहीं समझने वाली चीज है, तो वो मैंने उनको पेन ड्राइव में डाल के दे दिया था कि ये आप बजाइए। तो कबीर वाणी बजती थी और उसके बाद मैंने 2-3 प्रोग्राम किए थे। हमारे यहाँ कैप्टन शिव भाई है, वो भी हमारे प्रोग्राम में आए थे। तो एक बार मैंने प्रोग्राम अपनी बहनों का किया था। तो ये आपको, आपके पास गेस्ट रूम्स होते हैं तो आप गेस्ट रूम में उनको रखते हो, आप उनके लिए खाना वाना बनाते हो, क्योंकि हमारे लोग जो है इधर उधर नहीं खाते हैं तो अपना ही बनाया हुआ खाते हैं। तो ये जब सूबेदार मेजर को मैंने इनडिसिप्लिन एक्ट में ये सजा दी, जो कि बहुत कोई खास बहुत बड़ा पनिशमेंट नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको ईगो में ले लिया और उन्होंने मेरे अगेंस्ट में एक एनोनिमस लेटर लिखा। क्योंकि आपको पता है हमारा जीवन किस तरह का होता है, तो मेरे अगेंस्ट में कुछ लिख तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक बहुत सेंसिटिव चीज जो लिखी उस लेटर में कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कि ब्रह्म कुमारी को बुला के ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और उन्होंने ये जो इंसिडेंट है पेन ड्राइव में गाना बजाना और ये वो चीज भी उसमें मेंशन किया। तो ये बहुत बड़ी सेंसिटिव इशू बन गई थी। और जो मेरे बॉस थे जो दिल्ली में बैठते थे, वो इनके किसी जमाने में इनके साथ नौकरी कर चुके थे, और उनके साथ में भी मेरी प्रोफेशनल कुछ हमारे मतभेद थे। प्रोफेशनल मतभेद मतलब कि आप उसको ऐसे नहीं डील करना चाहते हो, क्योंकि आप यू आर अ कमांडिंग ऑफिसर, यू हैव टू डील द सिचुएशन द वे यू वांट। तो वो प्रोफेशनल मतभेद उनके साथ मेरा था। तो इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप इनके अगेंस्ट में कंप्लेंट लिखो। तो जब ये कंप्लेंट आया तो मुझे दिल्ली से कॉल आया कि वी विल बी टेकिंग सम एक्शन अगेंस्ट यू और आपको दिल्ली आना है। तो ये बहुत बड़ी सेंसिटिव चीज है, क्योंकि आप एक रिलीजियस, आप एक धर्म परिवर्तन का आपके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तो इट्स अ कोर्ट मार्शल केस। तो मुझे आज फोन आया और कल ही मुझे बुलाया गया। तो मैं गया तो शाम के समय राजधानी थी, सुबह पहुंचना था मुझे, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने दोस्त को याद किया। कुछ हमारे दोस्त यहां पर है, जैसे कैप्टन शिव है, उनसे भी मैंने डिस्कस किया। हमारे यहां पर एक अनसंग हीरो है, तो वो सारा सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का प्रोग्राम वही कर रहे हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, दीपक भाई, वो आपको बाद में दिखाई देंगे। तो वो अनसंग हीरो है, तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा भाई जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम यहां माउंट आबू से आपके लिए योग करेंगे और आप भी राजधानी में योग करो। तो हमने भी योग किया, उन्होंने भी योग किया। मुझे 10 बजे का टाइम, क्योंकि जनरली 9-9:30 बजे जो है दिल्ली खुलता है, तो मुझे 10 बजे अंदर लेके गए मेरे बॉस के सामने। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को इन्होंने कहा था कि आप उनको दृष्टि देना, तो दृष्टि दिया। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बड़ी कैजुअल में बोला, बोला क्या यार, एक काम करो, जो आपके अगेंस्ट में एनोनिमस लेटर आया हुआ उसका एक रिटर्न में हमें आप अपना जवाब लिख के दो, एंड यू कैन गो बैक टू योर यूनिट। तो मैं बाहर आया और मैंने बाहर आके मैंने बोला ये क्या हुआ, मतलब मुझसे सिर्फ ये बोला गया कि आपके अगेंस्ट में जो एनोनिमस लेटर आया है आप उसका जवाब दीजिए और आप चले जाइए। तो मैंने जवाब लिखा और मैं वापस आ गया। तो हमारे बॉस का फिर फोन आया, बोला ठीक है, जस्ट फॉरगेट व्हाट एवर हैज हैपेंड और कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टास्क, समस्या खत्म। कहां मैंने, मतलब एक जो समस्या मेरे लिए पहाड़ के समान था, वो मेरे दोस्त ने उसको एक छोटा सा राई बना दिया और वो समस्या खत्म हो गई। तो इस तरह से कई सारे ऐसे सिचुएशंस आए, हमने उसको इसी तरह से दोस्त को याद करके उसको सॉल्व किया।
बहुत सुंदर अनुभव सर, सच में जब परमात्मा को हम अपना दोस्त मान लेते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम अपनी जिम्मेवारियां उस सर्वशक्तिवान को जब सौंप देते हैं तो उसकी जिम्मेवारी हो जाती है कि वो कैसे हमें राह दिखाएगा। तो ये सच में वंडर होता है जब हम मन से परमात्मा को याद करते हैं और उन पे अपनी कुछ जिम्मेवारियां छोड़ देते हैं, तो जरूर हमें ऐसा सुंदर रास्ता मिलता है। सचान सर, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आपको देखा है, आप बहुत सेवा करते हैं, मतलब जहां जहां आपकी पोस्टिंग हुई है आपने विशेष सेवाएं की हैं, और फौज में तो जब होते हैं तो आप मुख से तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, आपको अपने कर्म से दिखाना होता है। तो सर ये जो आप सेवा करते हैं उसका तरीका, आपने AOC सर की भी सेवा की है, बड़े बड़े BIBs की सेवा की है, तो सर जो आप सेवा करते हैं उसका तरीका क्या होता है, प्लीज आप उसका।
शिव बाबा से जो ज्ञान का प्रकाश मिला, अनंत शक्तियां मिली और अनंत खजाने मिले, उसका बखान नहीं किया जा सकता, वो तो अंदर अंतरात्मा ही जानती है। हमारे शास्त्रों में कहावत है ना कि मंदिर का प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, तो वो कौन सा प्रसाद है? वो यही प्रसाद है, ज्ञान का प्रसाद, भगवान से मिले हुए इन खजानों का प्रसाद। तो मन में ये शुभ संकल्प हमेशा रहता है कि मैं जहां जा रहा हूं, जहां पोस्टिंग जा रहा हूं, वहां मुझे बाबा भेज रहा है अपनी सेवा कराने के लिए। मैं जिस कुर्सी पे बैठता हूं वो भगवान की गोदी है, मैं जो कलम चलाता हूं ये परमात्मा की अथॉरिटी से चलता है, और जो भी मैं वहां जिनके संपर्क में आता हूं, हमेशा मन में ये रहता है कि परमात्मा के गुण, परमात्मा के ज्ञान की खुशबू सबको मिलती रहे, ये संकल्प लेके चलता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमात्मा 33 करोड़ देवी देवताओं को ढूंढ रहा है, वो जानता है कौन कौन है उसके बच्चे, वो आप यहां इसीलिए आए। सत्ययुग त्रेता की जो स्थापना होनी है अभी, उसमें 33 करोड़ देवी देवता घराने की आत्माओं को पूरा ज्ञान मिलेगा। ऐसे ही भगवान ने हमें चुना नहीं है, आपको ऐसे चुन के यहां नहीं बुला लिया, आपका बहुत बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है, वो सौभाग्य मुझे महसूस होता है। तो वायुसेना में भी जहां जहां हम जाते हैं तो बाबा सेवा कराता है। सबसे पहले तो मैं ढूंढता हूं कि कौन कौन सी आत्मा अपने परमात्मा के ज्ञान को समझेगी और उसको आवश्यकता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि ये सोल्स हैं जिनको मैंने ज्ञान देना है। अब ज्ञान का माध्यम कैसे, जैसे भाई साहब ने सुनाया, इजीली कोई एक्सेप्ट नहीं करता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एक स्पिरिचुअल ज्ञान देना चाहेंगे तो वो उसको धर्म से जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि जहां हम जाते हैं, जैसे मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूं, ज्ञान में चलने के बाद करीब करीब 7-8 पोस्टिंग्स हुई, हर जगह बड़े ही सहज तरीके से परमात्मा के इस ज्ञान को छोटे छोटे बैचेस बना बना के उनको हमने शुरू में शुरू किया। कैसे शुरू किया? मॉर्निंग जो हमारी वर्किंग परेड होती है, परेड के बाद जितने हमारे जवान होते हैं उनका जो ACR भरा जाता है, आपका ACR भरा जाता है हर साल? ACR में बिहेवियरल एट्रीब्यूट होते हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, पंक्चुअलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, तो इसके बारे में ज्ञान देना शुरू किया। ये तो कोई मना नहीं कर सकता, ऑफिशियल परमिशन लेके शुरू किया तो AOC को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, CEO को बहुत अच्छा लगा कि ये अच्छी बात कर रहे हैं। उसके साथ धीरे धीरे आध्यात्मिकता जोड़ी, ऐसे करते 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 पूरे यूनिट में आप देखोगे कि एक बहुत अच्छी सी लोगों में एक फीलिंग आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है, जो कि हमें बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सार्थक सिद्ध होती है। उसके बाद वहां पर एक टीम स्पिरिट लाने के लिए सबको मैंने ये ध्यान दिया कि लाइक माइंडेडनेस लानी है, सबके माइंड पॉजिटिव होंगे तो कोई विघ्न आएगा ही नहीं, आएगा भी तो सुलझ जाएगा। इसीलिए रोज सुबह थोड़ा 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 भगवान का ज्ञान देना शुरू किया। ऐसे कर करके फिर बैचेस बनने लगे, 7-8 वारंट ऑफिसर्स, एयरमैन, 1-2 ऑफिसर्स, इनके बैच बने। बैच बना के फिर उनको मैं नियरेस्ट सेंटर पे ले जाता था और हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन करके पूरा कोर्स कराते थे। एक बैच हो गया, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ बैच, ऐसे करके हर जगह पे 6, 7, 8, 8, 10, 10 बैच चले, 100-100 लोग, 150-150 लोग आत्माओं को बाबा का ज्ञान मिला। ये एक पोस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, हर पोस्टिंग में जो वहां देवी देवता घराने की आत्माएं थी सबको ये ज्ञान मिला और वो आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ साथ हमारी वाइफ बैठे हैं जो हमारी एफआ होती है, एफ ओस जो वाइफ की एसोसिएशन होती है, हर जगह होती है, नेवी में भी, आर्मी में भी, आपके यहां भी होती होगी, वो भी हर जगह जाके एफआ में वो लेक्चर्स लेते थे, जैसे सेल्फ एम्पावरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, होलिस्टिक हेल्थ, बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअलिटी वाले टॉपिक्स। तो उससे लेडीज में भी एक बहुत अच्छा सा माहौल बन जाता था और एक गुलदस्ता तैयार हो जाता था। हमारे चारों तरफ ऐसे लोग बन जाते थे जिनके पास स्पिरिचुअलिटी की का जो ज्ञान है वो आ गया और उसके साथ साथ वो खुशबू फैलती थी। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि एओसी को, जैसे मैं जिस यूनिट का सीओ था तो वहां करीब 400 जवान थे, जैसे पठानकोट की बात करता हूं मैं आपको, तो वहां पर स्क्वाड्रन कमांडर ऑफ 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स हमारे साथ थी, हमारे पास करीब 400 लोग थे। तो उन्होंने जा जाके फिर मैसेज देना शुरू किया एओसी को कि सर, तो एओसी ने बोलता था कि यार जो भी फॉर्म 10 केस है, जो भी मेंटल केस है, वो विंग कमांडर सचान के पास भेज दो, वो सुलझ जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप बिलीव करेंगे, अंबाला में, पठानकोट में वो लोग अटैच कर दिए जाते थे हमारी यूनिट में और वो लोग ठीक होकर निकल के जाते थे। तो ये एक माहौल बन गया और एओसी को भी समझ आने लगा कि यार यहां कुछ अच्छा ही है। तो उन्होंने मुझे फिर निमंत्रण दिया। इस तरीके से हर स्टेशन में ऐसे एओसी के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया। फिर मधुबन से हम टीम बुलाते थे सिक्योरिटी विंग की, शायद ही कोई स्टेशन रहा होगा जहां टीम नहीं आई। और 3 दिन 4 दिन बैंगलोर में तो 7 दिन का कोर्स हुआ, एओसी खुद ज्ञान में चले। अभी जहां हूं वहां के एओसी ज्ञान में चल रहे हैं, एयरवाइज मार्शल अवाना सर उनका कोर्स चल रहा है 7 डेज का। तो इस तरीके से जब हम सेवा करते हैं तो वो छिपी नहीं रह सकती, तो भगवान के ज्ञान का जो प्रकाश है ना वो ऊपर तक जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, मैं जब एक यूनिट में गया तो वहां बहुत माहौल खराब था और लड़ाकू जहाजों में क्या होता है कि आपकी थोड़ी सी मेंटल एब्सेंस बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर सकती है। तो जहाज की जो मेंटेनेंस होती थी, यहां का मैं स्क्वाड्रन कमांडर था, तो हमारे अंडर में करीब 32 जहाज थे, फाइटर्स, सारे फाइटर्स थे और 16 हेलीकॉप्टर्स थे। तो इतने सारे जहाजों के साथ हमारे 400 लोग, उनकी मेंटल हेल्थ बड़ी बिगड़ी हुई थी, वो आपस में लड़ते रहते थे। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे साहब अपने सर बता रहे थे, कर्नल बिश बता रहे थे, एक वारंट ऑफिसर ने दूसरे को घुसा मार दिया तो बहुत बड़ा केस बन गया। और केस बनने के बाद में मुझे समझ में आया कि यहां पर इनका मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ा हुआ है। तो मैंने उनको एक होमवर्क दिया, मैंने कहा आप सब एक दूसरे की एक एक गुड क्वालिटी लिखेंगे। एक हफ्ते तक तो वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, वो सब बोले लगे सर इसमें तो कोई गुड क्वालिटी है ही नहीं। वो बोलता सर इसमें तो कोई गुड क्वालिटी है नहीं। मैंने कहा नहीं, अगर नहीं लिखोगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी। उसके बाद उनको लगा ये तो टेंशन हो गई कि अब छुट्टी नहीं मिलेगी, तो दे स्टार्टेड राइटिंग। उन्होंने एक दूसरे का बड़ी मुश्किल से, किसी ने एक लिखा, किसी ने दो लिखा। मैंने कहा ढंग से लिखो, 3-3 क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज है, अपना ये गलती वाला चश्मा उतारो, अच्छाई वाला चश्मा पहनो और अब देखो। तो उन्होंने देखना शुरू किया, सबने एक एक दूसरे की 3-3 क्वालिटीज लिखी। मैंने कहा अच्छी बात है, अब इसको बोर्ड पे लिख दो नाम के सामने, हर एक के नाम के सामने वो क्वालिटीज लिख दी गई। मैंने कहा अब आप जब भी इनको देखोगे वो क्वालिटीज से देखना। एक महीने में पूरी यूनिट का माहौल ही बदल गया, जो लड़ते थे आपस में दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, आपस में उनकी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि वो एक दूसरे के साथ बैठते उठते, उनके साथ घूमते। उसके बाद ये बाबा का ज्ञान उनको धीरे धीरे देना शुरू किया। तो इस तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि हम अगर कोशिश करते हैं ना तो यूनिट का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। और रोज थोड़ा थोड़ा, भगवान कहता है रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान का प्रसाद दो। आज इस एक टॉपिक पे बोला, कल इस टॉपिक पे बोला, कल मेंटल हेल्थ पे बोला, कल किसी ने किसी और पॉइंट पे, हार्मनियस रिलेशनशिप पे बोला, ऐसे करके टॉपिक्स करते देते देते बहुत बढ़िया एक माहौल यूनिट के अंदर हो जाता था, बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाते थे जो कि ऊपर तक जाते थे। तो इस तरीके से 7-8 पोस्टिंग्स में जहां जहां सेवाएं दी भगवान ने, शिव बाबा ने, वहां बहुत सारे आत्माओं का कल्याण हुआ। जो हायर अप्स, जो हमारे सीनियर्स थे, वो भी ज्ञान में चले बहुत सारे। और यही नहीं, अपने मधुबन से, माउंट आबू से, पूरी हमारी सिक्योरिटी विंग की फैकल्टी की टीम हर स्टेशन में आई, हर स्टेशन में आई और हर स्टेशन में बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीन जगह ऐसा हुआ कि तीन सुसाइड केस थे, वो सुसाइडल केसेस बच गए। उन्होंने बाद में आके बताया, सर आपने जो हमें वो ज्ञान सुनाया ना, उससे मेरा ये डिसीजन चेंज हो गया कि मुझे सुसाइड नहीं करना है। आई डिडंट नो दिस, मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर ये चल रहा है। पर इस तरीके से कई आत्माएं जो गलत रास्ते पे जाने वाली थी वो ठीक हो गई। और मैं आपको बताता हूं कि फौज में एक टेंडेंसी होती है जिसको कहते हैं रमपंच, आप सभी जानते होंगे, आपके यहां होता नहीं मुझे नहीं पता, बट फौज में तो रम पंच होता है। हर क्वार्टर में एक रम से पंच लगाया जाता है, मतलब क्या, सभी को रम पिलाई जाती है ना, रम की पार्टी होती है, तो लोगों की आदतें बिगड़ती हैं। और मैंने वो यूनिट में बंद कर दी, जहां जहां मेरे को कमांड का मिला मैंने कहा बंद, आज से रम पंच नहीं होगी। तो लोगों में बड़ी हलचल मच गई। मैंने कहा मैं दूसरा आपको रम पिलाऊंगा, भगवान की रम पिलाऊंगा, चिंता नहीं करो। तो दो तीन महीने के बाद जब उनको ज्ञान की रम मिलने लगी तो वो नशा चढ़ने लगा और उल्टा नशा उतर गया। तो इस तरीके से लोगों के अंदर चेंज आना शुरू हुआ। बहुत सारे लोग नॉन वेज से वेज बन गए, बहुत सारे ऐसे थे जो हैबिचुअल ड्रिंकर्स थे, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी। तो ये एग्जांपल्स, ये सब परमात्मा का जो प्रसाद है, ये जब लोगों में बटा तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। और जो हमारी वाइफ है उन्होंने बहुत सारी सेवाएं करी एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन में। बहुत सारी लेडीज जिनको स्ट्रेस रहता था वो आती थी और उनको बहुत सारे हम लोग चीजें बताते थे, बहुतों को मधुबन भेजा, फिर वो भी यहां तक आए। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली हर जगह चलते चलते जो बुरा माहौल, जो स्ट्रेस वाला माहौल होता है वो डाइल्यूट होता गया, खत्म हो गया। पॉजिटिव और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, बहुत ही पर्पसफुल थिंकिंग वहां ये हो जाती थी। और इस तरीके से जो एयरफोर्स के फ्लाइट सेफ्टी कोर्सेज होते हैं, फ्लाइट सेफ्टी मीटिंग्स होती हैं, उसमें ऑफिशियली कई जगह एओसी ने मुझे बोल दिया आप ये क्लासेस लोगे। तो पूरे ऑफिसर्स के लिए, पूरे मैन के लिए वहां पर ये क्लासेस लिए जाते थे। उन्होंने एक मेडिटेशन हॉल भी दे दिया कई जगहों पे। तो मैं आपको कैसे बताऊं कि ये एक वंडरफुल जर्नी थी। और जहां तक शिव बाबा की बात मैं बताऊं, बाबा के साथ तो वन टू वन चलता है। रोज सुबह उठ के गॉड इज माई, गॉड शब्द तो एक डेफिनेशन है, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर, भगवान भी एक डेफिनेशन है। भ से भूमि, घ से गगन, भ से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, भगवाना, किंतु वो है शिव बाबा, उनका नाम शिव है। तो बाबा से जो रोज सुबह अमृत वेले से रूरियान होती है आज तक नहीं छूटी, आज तक जो परमात्मा के दिए डायरेक्शंस हैं उससे पूरे चले। मैं आपको कैसे बताऊं, वो हाथ पकड़ के चलता है। एक जगह ऐसा हुआ कि मेरी एक पोस्टिंग गलत जगह करा दी किसी दूसरे ऑफिसर ने, मैं आपको लाइव एग्जाम अपना उदाहरण बता रहा हूं। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा ये ऑफिसर यहां चालाकी से आना चाहता है, इसने मेरे को यहां से जल्दी पोस्ट आउट करा दिया और कहां भेजा, बहुत कठिन जगह पे। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा क्या करें, मेरी तो बुद्धि चल रही थी कि मैं एयरफोर्स में किससे बात करूं, किस एयर मार्शल से बात करूं पोस्टिंग कैंसिल कराने के लिए, कोई नहीं मिल रहा था। सुबह सुबह जब मैंने बाबा को बोला, बाबा ने मेरे सामने एक चेहरा लाया, बोले इस बच्चे से बात कर लो। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो कल आपके सामने थे जो इनॉग्रल सेशन में, जो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे घोरमाड़े सर, मेरे ख्वाबों में नहीं था। बाबा ने कहा ये घोरमाड़े बच्चे से बात करो। मैंने बात करी, वो नेवी के वाइस चीफ, एयरफोर्स के वाइस चीफ के कोर्समेट से कॉल हुआ, कैंसिल हो गया। भगवान कैसे मदद करता है। पठानकोट में टेररिस्ट अटैक होने वाला था, पहले से हम लोग को पता था वो होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। तो बाबा को बताने से बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं, वो आपको एक छत्र छाया बन के आपके ऊपर आ जाता है। इतने सारे प्रैक्टिकल अनुभव हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं, रोज हम परमात्मा को रखते हैं, बाबा ये आया है, आप बताओ बाबा कैसे करना है। चार तरीके से उत्तर मिल जाता है, एक तो टचिंग आ जाती है, या जो हम रोज सुबह मुरली पढ़ते हैं उसमें आंसर आ जाता है, तीसरा किसी न किसी सोल से हमें उसका आंसर मिल जाता है, और चौथा आप बिलीव नहीं करेंगे, चौथा वो खुद करा देता है, अपने आप करा देता है। ठीक है, ये अनुभव है हमारे जीवन के। जब भी मैं घर से निकलता हूं, बाबा का घर है वो, मेरा घर नहीं है, गॉड का घर है वो, मेरे शिव बाबा का घर है। मैं उनको बता के जाता हूं, बाबा मैं जा रहा हूं, भगवान का हाथ ऐसे मेरे सामने आता है, बच्चे जाओ, और ऐसे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, ऐसे लेके आऊंगा। प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको मैं, ये रिलेशनशिप है शिव बाबा के साथ, ये विजन है परमात्मा के साथ। तो हर जगह परमात्मा ऐसे गाइड करते हैं, मेरे दोस्त बन के चलते हैं। मेरे परम पिता तो हैं ही, मेरे परम शिक्षक तो हैं ही, मेरे परम सदगुरु तो हैं। तो ये एक बहुत वंडरफुल जर्नी है, आप भी चलिए। आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें जो नहीं सुलझी है ना, सेकंड्स में सुलझेगी, सेकंड में, और आप उसको हाथ थाम के चलेंगे, सब कुछ उसके साथ सरेंडर करके चलेंगे तो आप देखेंगे बाबा आपसे कमाल कराएगा, है ना। ओम शांति।
थैंक यू सर। एक बार हम करतल ध्वनि से अपने तीनों भाइयों के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करेंगे, क्योंकि अनुभव तो इतने होते हैं ना कि आप सुनते जाओ तो मतलब टाइम का पता ही नहीं चलेगा, टाइम ओवर हो गया। पर मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आपके पास 4 दिन है, कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को, प्लीज आइए सर, आगे आगे आके आ जाइए प्लीज।
ओम शांति। सर मैं सार्जेंट लालाराम एयरपोर्ट स्टेशन ग्वालियर से आया हूँ, और आपका अनुभव है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेक्निकल फील्ड से, मैं भी टेक्निकल फील्ड से हूँ, तो मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ये जो आपकी जर्नी है इसको प्लीज गो थ्रू सर्विस पेपर और ब्रॉडली डिसेमिनेट हो, ताकि हर यूनिट और हर टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल एंड फ्लायर्स नीड सच टाइप ऑफ हेल्प, तो लॉट ऑफ डेवलपमेंट विल टेक प्लेस इफ ये सब कुछ हो जाता।
ठीक है, मैं इस पर, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, मैं इस पर सर्विस पेपर लिखूंगा, 100% लिख के रखूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
तो जो आप 4 दिन जो यहाँ बिताएंगे, आप भी बहुत सारे अनुभव लेके जाएंगे, तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप जो ये अनुभव है जरूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो ये सेल्फ एम्पावरमेंट की जर्नी है जरूर शेयर करें, तो न केवल आपको लेकिन दूसरों को भी इसका फायदा होगा। थैंक यू सर वंस अगेन, बहुत सुंदर आप सबने सबको मोटिवेट किया, थैंक यू। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।